بھگوان ابھی اچھے اچھے سروس کرنے والے بھی شریر چھوڑ کے جاتے ہیں
مثال دو اچھے اچھے سروس کرنے والے کون اور ان کی اچھی سروس کا پروف کیا آیا؟
کوئی کوئی ایسے پروف ہے کوئی ایسے سروس چھوڑ کے جاتے ہیں
تو ایک دو کا مثال بتاؤ جو اچھی اچھی سروس
انہوں نے سروس چھوڑ دیا وہ تو اتنا سروس کر رہی تھی
سروس کر رہی تھی ایک طرف گہنا بھی بہت ڈھیر سارا پہنتی تھی سروس ہوتی ہے سروس ہوتی
تو بہت سارے
سروس نہیں ہے اچھا سروس کا پروف بھی تو کچھ ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور دھن چکر کا پروف زیادہ ہو تو ہارٹ کمزور ہوتا ہے تبھی ہارٹ فیل ہوتا ہے کیا اور ہارٹ کی بیماری ان کو پہلے سے
ایسے ایسے پوائنٹس کو پکڑ کر کے کنفیوز ہو کر کے ایسے کیوں ہوتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے
کون کہتا ہے
کوئی کوئی ہمارے
دوسرے کہتے ہو نا کہنا
تو یہاں آ کر کے ہمیں
باپ کے سکیل کے بچے ہوں گے جو باپ کے سکیل کے بچے ہوں گے وہ تو زیادہ سروس کریں گے اور جو زیادہ سروس کریں گے ان کو باپ خود بیٹھ کر کے یاد کرے گا باپ خود یاد کرے گا تو باپ کی ان کو پاور ملے گی یا بھوت پریتوں کو پاور ملے گی باپ کی پاور ملے گی اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دم کام کرتے کرتے سر چھوٹ جانا کہتے جیسے برہما بابا کی موت ہو گئی ایسے موت ہو گئی
برہما بابا تو آپ کی سروس کیا نا
برہما بابا سروس اچھا کیا پھر رزلٹ کیا نکلا اچھی سروس کا رزلٹ بھی تو یہاں نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے کیا نکلنا چاہیے نرسی نارائن بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے بنا وہ سروس بہت اچھی کرے جیسے کہ پانڈو بھون یا ماؤنٹ آبو میں وہ کون بھائی ہے سورج بھائی بہت اچھی سروس کرتا ہے سارا ایڈوانس گیان سناتا ہے باپ کو چھپا دیتا ہے کیا باپ کو گپت کر دیا اور اپنے کو نالج کے آدھار پر واہ واہی لے لی تو سروس ہوئی یا ڈس سروس ہوئی یہ تو ڈس سروس ہو گئی برہما بابا نے بھی جس نے گیان دیا اس کا نام کبھی رکھا برہما کماری ودیالیہ نام کیوں رکھا پرجا پتا نام کیوں نہیں رکھا یہ باپ کو گپت کر دینا یہ کیا سروس ہوئی سارا گیان کوئی دے دے اور باپ کو گپت کر دے تو ڈس سروس ہو گئی یہ سروس ہوئی ڈس سروس ہو گئی اس ڈس سروس کا یہ فل ہوا کہ اس جیون میں رہتے رہتے انہیں پرسدھی نہیں ہو پائی سارا تن لگایا سارے سمبندھی لگائے سارا دھن لگایا من بھی جتنا تھا وہ بھی لگایا لیکن پھر پراپتی
نہیں
پراپتی اس جیون میں نہیں تو مکھیہ بات تو ہے باپ کو پرتکش کرنا ہے
ساری دنیا تو باپ کو یاد کرتے باپ تو سیوا والے بچوں کو یاد کرتے جو سیوا کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کو باپ کی یاد کے بل ملے گا ایسے سمجھ کر کے سیوا کریں گے اس سے فائدہ ہوتا ہے نقصان
نہیں ہے باپ کی یاد میں جو طاقت ہے وہ بچوں کی یاد میں طاقت تھوڑی ہے باپ بے بیچاری یاد کرے گا کہ اب بے بیچاری یاد کرے گا تو باپ کی یاد میں زیادہ پاور ہے باپ جس سمے جس بچے کو یاد کرے گا وہ اب بے بیچاری یاد ہوگی یا بے بیچاری یاد ہوگی اب بے بیچاری یاد ہوگی اس میں کتنی پاور ہوگی بچے تو دعا پر اسے لے کر کے کتنے بے بیچاری بنے عادت پڑی ہوئی ہے ایک سیکنڈ بھی بدھی ایک جگہ نہیں رہتی ٹھیک ہے کنچن کایا بھی ہوگی جیو پرشارتھ کریں گے تو ان کی نیورل کنچن کایا نہیں ہوگی انہیں کی تو ہوگی دھیما دھیما پرسارت ہوا تو نیرول کنچن کایا کیسے ہوگی देने के आधार पर कोई सर्विसेबल नहीं हो जाता है। कोई भी कन्याय है यज्ञ में सरेंडर होती है, धन के आधार पर सर्विसेबल हो जाती है क्या? धन उनके माँ बाप ने दिया या कन्या ने दिया? माँ बाप ने दिया, तो माँ बाप को भाग्य बनेगा। वो भी देने के बाद फिर कहीं अगर वापस ले ले तो क्या होगा? दुनिया की नजर में तो आ जाएगा, दिया 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 बहुत दिया, फिर वापस ले लिया तो कौन सा पद बनता है? रुपना बनाया पद, वो भी नीचे चला गया,
वापस लिया पापा कोई?
ये सब बताया नहीं जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम तो जनरल बात बताइए।
कोई
एक माताएं थोड़ी चल रही है, साथ साथ में भाई भी तो चल रहे हैं ज्ञान में। अकेली माताएं चलती हैं ज्ञान में क्या? आप सब जगह सुब्बाराव थोड़े ही है सरोजनी माता के साथ है कि जैसे चलाएंगे वैसे सुब्बाराव भाई चल पड़ेंगे? ऐसे है क्या? नहीं बातों के एडवर्टाइजमेंट को नहीं सुनना चाहिए। बाबा ने एक ही बार कह दिया सब बातों का तंत्र, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अब ब्रह्म कुमारी कितनी बातें करती हैं एडवांस पार्टी के बारे में, सुनी सुनाई बातें हैं या प्रैक्टिकल वो उसका उसको निखार करके देखा गया? किसी ने प्रूफ प्रमाण लिया नहीं? जो सुना दिया अखबारों ने सुना दिया, सुन लिया, टीवी ने सुना दिया दिखा दिया देख लिया, रेडियो ने सुना दिया दिखा दिया सुन लिया, फिर किसी ने जाकर के उसको देखा ये असलियत क्या है?
ऐसा
अभी तो फाइनल विनाश होगा तो ढेर सारे मरेंगे। क्या कैसे मरेंगे? ये गुलानी के बम सुन सुन करके मरेंगे।
अभी क्या हो रहा है? अभी एडवांस पार्टी के जो भाई बहन है उनके बीच में ऐसा हो गया होगा?
एडवांस पार्टी में कोई एक तरह की बीज रूपात्मय है, सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी है के और वंशों के भी है बीज, तो जो और वंशों के बीज होंगे वो तो ग्लानी करेंगे ना, ग्लानी करके एडवांस पार्टी को ही उड़ा के रख देंगे। फिर भी सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी। अभी तो फाइनल परीक्षाएं बाकी है, अभी की छोटी मोटी परीक्षाएं हुई, ये सुनी सुनाई बातों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो डायरेक्ट बाप से पूछो। इतना ज्ञान सुनाने की बात भी बाप के ऊपर निश्चय आ जाता है छोटी मोटी बातें सुनकर भी। हाँ ऐसा ही हुआ, वो ज्ञान सारा बेकार हो गया, सुनी सुनाई बातें सच्ची हो गई। खास बात यह है भाषा की, भाषा प्रॉब्लम जो है बहुत ऊपर नीचे कर देती है। भाषा प्रॉब्लम में गुरुओं की बन जाती है, जो गुरु लोग होते हैं जो मनमानी चाल सुना दो, दूसरे वाले तो कुछ है ही नहीं। भाषा न जानने के बाद सारा उल्टा पलटा हो जाता है। मुरली के पॉइंट ज्ञान के पॉइंट से अच्छी तरह बुद्धि में बैठते नहीं, क्योंकि भाषा को जानते नहीं, इसीलिए गुरु जैसा चाहते हैं वैसा उसका क्लेरिफिकेशन कर देते हैं।
ఇప్పుడు మనకి జరిగేది ఒకే చోటే కదా, కానీ ఇన్ని మందిరాలు ఉన్నాయి కదా వీటి యాత్రకారు భక్తికి జ్ఞానానికి పరిస్థితి జ్ఞానం మందిరాలు తక్కువ కదా, ఒకటి రెండు చోట్ల, కానీ పూజలు అయితే అనేక మందిరాల్లో జరుగుతున్నాయి కదా, 1,000,000.
భగవాన్ మాత పూజ अभी भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन तो ज्ञान सुनाने वाला मंदिर तो एक ही है, फिर भी इतने क्यों इतने मंदिर हो गए?
ये तो बोला है,
पूजा क्यों हो रहा है?
मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएंगे।
अन्य मंदिर बताइए, गिरजाघर गुरुद्वारे चर्ची लगानी मस्जिद अन्य बताइए, ओके मंदिर मिलूतन जीवन
एक ही मंदिर रह जाएगा। सब जितने भी गिरजाघर मंदिर ये गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, सब खलास हो जाएंगे। कोई कहे कि अभी क्यों नहीं हो गए, वो तो ऐसे ही है जैसे पूरी तेल में घी में डाली जाती है, अच्छी तरह तेल गर्म हो जाएगा तो पूरी पकने के ऊपर फिर ऊपर आएगी। जब तक तेल अच्छी तरह गर्म नहीं होता है, ये ज्ञान का तेल है, याद का घृत है, ये घी जब तक गर्म ही नहीं होगा, योगा की तीखी ही नहीं होगी तो पाप कर्म भस्म कैसे होंगे? हमारे पाप कर्म ही भस्म नहीं हुए, भक्ति कैसे भस्म हो जाएगी? अभी भक्ति का जोर भी बढ़ता जा रहा है और फिर बच्चे जो है वो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तो 100 गुना बोझ भी चढ़ता जाता है, नहीं चढ़ रहा है।
अभी बाबा सभी का याद ठंडा हो चुका है,
ठंडा याद हो चुका है। ठंडी चीज कब होती है? वो चीज ठंडी कब होती है?
आग बुझ जाता है, जो आग जली है वो तो बुझ
जाता है। आग भी बुझी हुई है और फिर जो पुरुषार्थ है वो भी ठंडा हुआ पड़ा है। बर्फीले मौसम है, बुद्धि जामड़ी हुई पड़ी है, पुरुषार्थ कहां से होगा? थोड़े ही अभी पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो रहा है कि सच्चाई क्या है ये सामने नहीं है। कहते हैं मुझसे बाबा आया हुआ है, थोड़ा सा कोई कुछ सुना देता है, अरे बाबा आप कुछ सब ऐसे ही दुनिया दिलती चली आ रही है, बाबा बाबा दुनिया बड़ी पड़ी, बस उगड़ गया निश्चय हो गया भगवान का फोन। निश्चय बुद्धि विजय के उस आठ में भी विजय कब होगी? जब जब निश्चय बुद्धि बने। ये पक्का समझ लो, जो बाप की ग्लानी करके सुनाते होंगे वो घर बैठने वाले होंगे, मैदान छोड़ करके आकर के घर में बैठ गए होंगे। क्या कहा? जो भी हो, जो भी कोई भी प्रकार की ग्लानी करके सुनाते हैं, मिक्स करके बात सुना देते हैं, वो जरूर पुरुषार्थ से हारे हुए। एक सिपाही होता है कि मरता रहता है, प्राण निकलते रहते हैं तो भी लड़ाई लड़ता रहता है क्या? और एक सिपाही ऐसे होते हैं कि देखे अरे ये तो सब हार रहे हैं, बस लेट गए आराम से, 2-4 मुर्दे ऊपर डाल दिए, करने दो, मुर्दे बन के पड़ गए मुर्दों के पीछे।
ठीक ही याद के लिए थोड़ा थोड़ा जिससे हम बताएं बाबा,
ठीक ही याद के लिए, ठीक ही याद के लिए, ठीक ही याद की युक्तियां यही है, तर्मन धन सब तेरा, न संबंधी कोई मेरा। कहेंगे हमारा शरीर काम नहीं देता, बाबा अभय कवाणी में कहते हैं, मुरली में कहते हैं, माताओं को पंख लग जाएंगे ईश्वरीय सेवा के, क्या घर में रह करके इलाज होता है? बाहर की दुनिया में जाकर के इलाज नहीं होता? बाबा घर में इलाज नहीं होता क्या? नहीं होता है, है? होता है कि नहीं होता है? फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा।
बूढ़ी बूढ़ी माताओं को शंका,
बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पंख लग जाएंगे ईश्वरीय सेवा के।
हम तो बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, जवान जवान बच्चे तो शरीर छोड़ जाते हैं, हमारा क्या हाल होगा?
जवान बच्चे शरीर छोड़ के जाते हैं शरीर, अगर उनके भक्ति के संस्कार, मुरली बोला कि नहीं, भक्ति के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये सोना पहनना, चांदी पहनना, हार पहनना, ये भक्ति के संस्कार नहीं है, शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कितनी मुरलियों कह दिया इस समय जेवर नहीं पहनना, कान काट के ले जाएंगे। अब दिखावा करने की आदत है, क्रिश्चियनिटी की आदत है, तो क्रिश्चियंस के साथ नहीं जाना पड़ेगा। क्रिश्चियंस वाली आत्माएं वो फिर प्रवेश नहीं करेंगी। ज्ञान की पॉइंट्स हर समय बुद्धि में एवर रेडी रहना चाहिए। नौजवान शरीर छोड़ते जा रहे हैं तो हम कहां बचेंगे? अरे साथ साथ ये भी तो बोला है कि कौन सा शरीर छोड़ेंगे? भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना, चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, ज्ञान में चलने वालों का अगर शरीर भक्ति मार्ग के संस्कार 100% की स्टेज में पहुंच गए तो वो तो फिर छोड़ेगा।
अमरनाथ के बच्चे
बने तो, अमरनाथ के बच्चे तो आत्मा है, आत्मा बन गए कि देवान आता है कि हम ये भी पहने कि वो भी पहने अच्छा लगे, ये देवान है कि अमरनाथ के बच्चे हैं? ऐसे ही अमरनाथ के बच्चे बन जाते हैं। अमरनाथ के बच्चे पहाड़ पर जाके अमरनाथ के पास पलेंगे, लेकिन दुनियादारी में रहेंगे। एडवांस पार्टी में भी तो 10 तरह की धर्म की आत्माएं हैं, एक धर्म की है क्या? यहाँ तो 10 धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं, उनमें पास होने वाले, फुल पास होने वाले, और इसी जीवन में रहते हुए कंचन काया बनाने वाले, जिनका शरीर नहीं छूटेगा वो सिर्फ सूर्यवंशी है, बाकी 9 वंश वाले तो शरीर छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे। चंद्रवंशी भी बचेंगे, लेकिन वो बचेंगे जो अपने को फुल सरेंडर कर देंगे सूर्यवंशियों के सामने। अगर नहीं झुके हैं, झुकते नहीं हैं, तो उनको भी सही छोड़ना पड़ेगा। चंद्रवंशी राधा है, चंद्रवंशी राधा का सारा कुल है, पूरा झुकेगा तो ठीक है, चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगा। नहीं झुकेगा तो कौन सा वंशी रह जाएगा? चंद्रवंशी का चंद्रवंशी भी रहेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा। अरे तेलुगु में बोल दो,
तेलुगु में पद्धतिगा चप्पे
तेलुगु में चप्पू
तेलुगु सीख रहे हैं, हम हिंदी नहीं सीखते,
बाबा मरणी నగలు ఏవైనా ఉంటే వేసుకోండి, కానీ లేచాడు వాటి గురించి ఆశపడకూడదు, ఇచ్చ ఉండకూడదు, ఉంటే వేసుకుంటే
అనిపించింది, లేకపోతే దాని కోసం తాపత్ర పడద్దని కాదు చెప్తాం, అసలు ఉందని
చెప్తారు చెప్తున్నప్పుడు
लो क्लास कैसे छूटे?
वो बात करेंगे ना, समझाना बाबा।
अभी जेवर गहने सब नहीं पहनते हैं तो बाहर वाले पूछेंगे ना आप क्यों नहीं पहनते,
उनके सामने पहनते हो, यहाँ आकर पहन के बैठने की क्या जरूरत
है? अरे కావాలకండి కూర్చోండి,
ఆ బ్రాహ్మణు సభకి జాగ్రత్త బయటకి మనం పెండింగ్ జరుగుతుంది, సెంటర్ లో బయట పెండింగ్ జరుగుతుంది,
కాబట్టి సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి, తీసుకోబాకండి
और जो सरेंडर ब्रह्म कुमारी है उनको पहनने की क्या जरूरत?
सरेंडर ब्रह्म कुमार नहीं थे, वाले तो धरने अवसर लेंगे ना,
उनको कोई है दुनिया वाले कहेंगे तुमने क्यों नहीं पहने?
ప్రపంచం వాళ్ళు ఎవరు నడుగుతారు వాళ్ళని ఎందుకు భరించలేదని?
జో లోక్ భస్మ హోనే వాలా ఉస్ లోక్ కి లాజ్ కా బహుత్ ధ్యాన్ రహతా హై యే క్యా కహేగా వో క్యా కహేగా వో సబ్ భస్మ హోనే వాలే ఔర్ జో దునియా సామ్నే ఖడీ హుయీ హై తీసరీ ఆంఖ్ సే దిఖాయి పడ్ రహీ హై కి అబ్ యే నయీ దునియా ఆనే వాలీ హై वहां ये गहने आने पहने की कोई जरूरत नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण जो गहने दिखाए वो द्रविगुणों के गहने हैं, ये स्थूल गहने नहीं है। तो नई दुनिया की लोग लाज का ध्यान नहीं रहता है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसका ध्यान नहीं, और जो दुनिया भस्म होने वाली है पता नहीं कब भस्म होना शुरू हो जाए उसका ध्यान इतना ज्यादा है। अरे ये महाभारत युद्ध तो करना पड़ेगा सबको, ये सत्य असत्य का युद्ध है, इसमें से सभी को पसार होना पड़ेगा। गेट वे टू हेवन इज महाभारत, महाभारी महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हम झूठ की नैया में भी पांव रखे रहे और हम स्वर्ग में भी चले जाएं, हो नहीं सकेगा। अरे हमारे कुल का होगा वो तो थोड़ी सी बात सुन करके ही हमारी तरफ खींचा चला आया है। उसकी बातें मानते रहना, उसके पीछे पीछे चलते रहना, उसको खुश करते रहना, वो मानने वाला नहीं है। घर परिवार के होंगे ज्यादा ज्यादा प्रजावर्ग के बन जाएंगे, और राजा महाराजा तो बनते बनने से रहे जब इतना विरोध कर रहे हैं। और जो ऊंचा पद पाने वाले हैं उनके लिए तो बाबा ने बोल दिया है, एकदम सीधा सीधा बोल दिया है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। जो राजा होता है वो किसी की सुनता है क्या? राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्मा वो किसी के डायरेक्शन पर चलेगी क्या? वो अधिकारी होगी या किसी के अधीन होगी? यहां दिखाई पड़ेगा, कोई लौकिक संबंधियों के अधीन नहीं, अधीन माना ही प्रजा, अधिकारी माने ही राजा। अपने अंदर झांक के देखना, अभी ईश्वरीय नियमों पर हम चलने के कितने अधिकारी बने।
చెప్పండి చెప్పండి
మన బ్రహ్మకుమారి ఆత్మ వచ్చి ఇట్లా ఉన్నారు, ఏమి ఇంత మీద కింద ఉంటారు, ఏమి లేదు ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సి ఇంత కలుగుతున్నారు మిగతా పడతారు ఆరంభ ఏమున్నాను ఇంకా నేను ఎన్నున్నా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన వచ్చింది లేదు ఇట్లా పెట్టి ఉంటే వస్తుంది ఒక మన ఇంట్లో గృహస్థం పెట్టుకున్నాను ఇంకోటి లేదు ఏమి లేదు ఉంటే కదా మీ తండ్రి ఇంత గొప్పవాడు ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియపడలేదా అని ఆమె ఇంట్లోనే అడిగింది.
దానికి రెస్పాండ్ పెట్టండి
సపరేట్
బాపకా
एक हफ्ते के पहले ही एक ब्रह्म कुमारी यहाँ आई थी,
यहाँ
चले ना
शनिवार
माता का घर यहाँ पर है, वहाँ आई आकर के अब तो इतना ऊंचे भाव करते हैं ना तो आश्रम जैसा रहा है ना, ऐसे गृहस्थ में रह करते हैं ऐसे रहने से अट्रैक्शन नहीं होता है ना, कोई
रहने से अट्रैक्शन नहीं होता है,
अट्रैक्शन नहीं होता है ना, ये सब बोल के कही थी।
किसका अट्रैक्शन? किस चीज का अट्रैक्शन?
आपको
बड़े सन्यासी प्रत्यक्ष करेंगे जवाब दो। अर्जुन जैसे गृहस्थियों को भगवान मिलता है, अर्जुन जैसे गृहस्थी भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, अर्जुन जैसे गृहस्थी भगवान का तरफदारी लेते हैं, या सन्यासी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कृपाचार्य ये भगवान की तरफदारी लेते हैं, वो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं?
ध्यान
से जवाब देना चाहिए।
సన్యాసుల్లా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కృష్ణ భీష్ములాంటి వాళ్ళు ప్రత్యక్షం చేశారా లేదు? ఆస్థాన వాళ్ళే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసేది, సన్యాసులు ప్రత్యక్షం చేయలేరు.
అరే వో తో ఫస్ గయే నికల్ నహీ సక్తే అప్ని కమ్జోరీ కో జాన్తే హై ఇస్లియే ఉల్టీ ఉల్టీ బాతే కర్కే సునా
రహే హూం. నా ఇర్కో నా బయట అందుకని ఏదో మాట చెప్తూ ఉంటారు.
గ్రహస్థి మాతాను కమ్జోర్ కర్నే కే లియే
గ్రహస్థి మాటలు కన్ఫ్యూజ్ అవడం కోసం వాళ్ళని ఏదో చెప్తుంటారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన చెప్తున్న మాటలు చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళ మాటలు మనం
बाबा ने मुझसे बोलने में कहा गया लग लगे अच्छे अच्छे भीख मांग मांग करके अच्छे कपड़े पहनो, भीख मांगने से मरना वाला
अच्छा,
भीख मांग मांग करके तुम बढ़िया बढ़िया मकान बना के बैठ जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, हजार हजार रुपए की साड़ी, वो ज्यादा अच्छा है.
మహారాష్ట్రలో రాములు పెట్టిస్తారు పోయి ఆయన ఎమ్మెల్యే గారి పోయి ఒక కేసు పెట్టుకుని నేను మోటార్ పాత్ర మూడు వేలు ఉంది అడిగేసంట.
ఎప్పుడు అడిగంట
మొన్న అయితే అక్కడ కేసు పెట్టుకుని అడిగేదానికి
पाँच हजार देंगे तो त्रेता में आएंगे.
तीन हजार देंगे तो त्रेता में आएंगे, सात हजार देंगे तो सतयुग में आएंगे. तुम मिलाते
हैं
ये कौन सी भगवान है, कौन बताया
ब्रह्मा कुमारी भगवान.
సరేలే వదలండి,
ఏదో
వచ్చింది పని
నెల్లూరుకి పోయి మత నీ అయ్యా మేపాడు మాటలు కదా కోయి బాత్ అందర అటక్తి తో ఖుల్కి పూసన చెయ్యి.
మీ మనసులో ఏదైనా ఇబ్బంది పాయింట్స్ ఉంటాయంటే అడగండి, తెలుగు అడగండి కానీ హిందీలో చెప్తాము. లేకపోతే మనసులో ఏ బాధలు పెట్టుకోవాలండి, ఏ ఆలోచన పెట్టుకోవాలి అడిగేయండి. అది బాబా చదివితే బాగుంది, మీరు అని పక్కన
చెప్పండి. పూచేంగి బాబా బురా మాన్ జాయింగి,
మనం అడిగితే బాబా తప్పుగా అనుకుంటారు అనుకోవద్దు, అడగండి.
పెద్దగా
చెప్పండి,
హిందీ వచ్చిన వాడు పురుషార్థం తక్కువ ఉంది, హిందీ వస్తుంది
పురుషార్థంలో
పురుషార్థం హిందీ వాడు పురుషార్థం తక్కువ మాట్లాడుతుంది.
పూచ రే హిందీ నీ జానే అచ్చే ప్రసాద్ కరే హిందీ జాన్నే వాళ్ళే బాప్ సే బాత్ కరే ప్రసాద్ తో కమ్ కరే
ऐसा कुछ जरूरी नहीं.
जो हिंदी नहीं जानते
नहीं जानने वाले वो भी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और बाबा से प्यार भी करते हैं, और हिंदी जानने वाले भी ऐसे हैं कि जो बाबा से प्यार भी नहीं करते पुरुषार्थ भी अच्छा करते
हैं.
देखो उत्तर भारत हिंदी जानने वाला है, सारा नॉर्थ इंडिया हिंदी बहुत अच्छी जानता है, शास्त्रों के अच्छे जानकार है, लेकिन బాబా పహచాంతి పహచాని ఇచ్చా
హిందీ తెలియనంత మాత్రాన పురుషార్థంలో కలిగినవి అవ్వరు. శబ్దం బాగానే ఉంటుంది, తండ్రికి తెలిసి ఉంటుంది. హిందీ తెలిసినంత మాత్రాన తండ్రి గుర్తిస్తారని లేదు, తండ్రి మాట వింటారని లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు చాలా శాస్త్రాలు చదువుకున్నారు, హిందీ బాగా తెలుసు అయినప్పటికీ వాళ్ళని పురుషార్థం చేస్తున్నారా? కాబట్టి అలా లేదు, ప్రశాంతం చేయడం ముఖ్యం కానీ భాష కాదు, భావం బాగుంది.
ऐसा कोई बात नहीं, जिसको इस जन्म में हिंदी नहीं आता पिछले जन्म में ये गारंटी है कि वो पिछले जन्म में हिंदी जानने वाले प्रदेश में पैदा नहीं हुआ.
ఈ జన్మలో తెలుగు మాత్రం వచ్చి హిందీ రాలేదు అంటే పోయిన జన్మలో హిందీ రాలేదని అర్థమా? కాదు కదా. కాబట్టి బాబా ఇంక మొదలు మీరు చెప్పుకున్నారు ఆ విషయం, మీరు సేవ చేయడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు తప్ప ముందు జన్మలో మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ లోనే ఉన్నారు, హిందీలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి అంటే గుర్తించారు అక్కడ విషయం అర్థం చేస్తుంది. మీరు ఎందుకు తగ్గించుకుంటారు?
ఆత్మా స్వదేశీ విదేశీ అవుతీ హే యా శరీర్ స్వదేశీ విదేశీ అవుతా
హై?
ఆత్మ స్వదేశీ విదేశీ, శరీర విదేశీ హో సకతా హై. ఏ శరీర నే దక్షిణ భారత్ మే జన్మ లియా తో భాషా నహీ జాన్తా హై, లేకిన్ యే కోయి జరూరీ నహీ కి జిసనే దక్షిణ భారత్ మే జన్మ లియా భాషా నహీ జాన్తా హై, విదేశీ భాషా జైసీ హో గయీ తో వో పూర్వ జన్మ మే భీ ఉత్తర భారత్ మే కభీ జన్మ నహీ లియా హువా హై, లియా హువా ये कोई जरूरी नहीं है. कोई ने त्रासी जन्म नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया, हिंदी भाषा भाषी रहा, और कोई हिसाब किताब ऐसा बन गया है कि आखिरी जन्म यहां लेना पड़ा, तो क्या भगवान का प्यारा नहीं हो सकता?
अरवे मूड जन्म लो हिंदी देश जन्म తీసుకొని చివరి జన్మ లో ఇక్కడ జన్మ తీసుకొని ఉండొచ్చు. అట్టది తండ్రి పిల్లవాడు కాకుండా పోతున్నాడా? తండ్రి తీసుకోకుండా పోతాడా? కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకుంటారు. కాబట్టి హిందీ రాని వాళ్ళు మా బతి బతికింతానా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తండ్రిని గుర్తించి తండ్రి పట్ల ప్రీతి ఉంటే చాలు, తప్పకుండా రాజ్యంలోకి వస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు ఈ విధంగా కించపరచుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మా హిందీ రాదు మా బతికింతేనని
कि जो दक्षिण भारत में जो जन्म लिए हुए हैं, दक्षिण भारत में जन्म लेकर के ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, वो सब विदेशी हैं, वो एक तरह की गलत धारणा फैलाना. क्या विदेशी आत्मा नहीं होती है? विदेशी शरीर होता है, और शरीर आज इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं रहेगा. इस जन्म में ये शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत का है. पिछले जन्म में कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म दक्षिण भारत का ही हमको जन्म मिला था.
भारत యొక్క విదేశము దక్షిణ భారతదేశం అన్న అట్లనే దక్షిణ భారత దక్షిణ భారతదేశంలో మనం ఇప్పుడు జన్మ తీసుకున్నాం, శరీరం వచ్చింది, కానీ ముందు జన్మలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో నా పక్కే హిందీలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అలానే ఉండాల్సిన పనే లేదు, దాని ముందు జన్మలో ఆడుతున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మనకి ఆ ప్రాప్తి దొరుకుతుంది. కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు.
మురళి వినాలని మీకు చాలా ఇష్టంగా ఉండడం లేదా? హిందీ అయినప్పటికీ కూడా
కాబట్టి భాష గురించి కాదు, ముందు గురించి నిశ్చయం గురించి ముందు చూడాలి. ఏ విధంగా ఎవరైనా సరే హిందీ భాష రాదని మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే చేస్తున్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
బైచాన్స్ ఇస్కా మతలబ్ ఏ థోడే కి బచ్చా బడే హోకర్ కే భాషా నహీ సీఖ సక్తా హై, సీఖ సక్తా హై. అరే ఆప్ యహాన్ హై, అభి బంధన్ మే హై, మాతా హై, నహీ సీఖ పా రహీ. బంధన్ సే ఛూటీ అభి బాబా కే పాస్ పహుంచ్ జాయేంగి తో నహీ సీఖేంగి. जो बाबा के पास पहुंची हुई माताएं हैं दक्षिण भारत की, वो हिंदी नहीं बोल रही,
बोल रही
है. मन विदेशी उड़ा उर्दू మేము విదేశీ ఆత్మలం కదా అనే భావన కూడా ఉండకూడదు మన భారతవాసి.
ఏ భావన ఫైలానే వాళ్ళే ఏ అభిమాని సాండే హే భావన ఫైలాతే విదేశీ ఆత్మే హే వో భాషా నీ జాంతీ హమ్ సబ్ విదేశీ హే ఆర్ జో భాషా జాంతే హిందీ భాషా వోహి స్వదేశీ హే. हम कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा जानने वाले हैं बाप को नहीं जानते और बाप की मत पर चल भी नहीं रहे हैं और सारी विदेशियों की सारी परंपराएं अपना के बैठे हुए हैं जिंदगी में वो विदेशी
और विदेशी विदेशी चुप्तारो देहमानुदे కాబట్టి వాళ్ళు మనం కంటే విదేశాలు వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ బాగా అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పేసి వాళ్ళని చెప్తూ ఉంటారు. దాని గురించి మనం కొంచెం
అది
గుడి మాటలు రానాయ
ఏమి చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి, సంగతి చెప్తే ఎట్ట
వేరే భోజనం ఎట్లా
చేయాలి ఖానా కైసే
भगवान ने अभी 4, 6, 8, 10, 15 साल से कुकर चलाया है वो घर में बैठे कुकर में दाल चावल आलू भर दो, एक बर्तन में दाल, एक बर्तन में चावल, एक बर्तन में आलू और सब्जी खाना हो तो एक बर्तन में सब्जी काट काट कर रख दो, चारों चीजों को रखो और आग पर चढ़ा दो, वो भी चला दिया है क्या गैस, लकड़ियां भी नहीं जलानी पड़ती, गैस के ऊपर रख दो 10-15 मिनट रखा रहने दो और उतार के नीचे रख दो ठंडा होने दो आराम से, जब ठंडा हो जाए 10 मिनट में खाना तैयार, कुछ भी करना नहीं पड़ता. और बाबा ने बता दिया सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल आलू.
क्या गैस कुकर బియ్యం పెట్టండి, ఓ దాంట్లో పప్పు పెట్టండి, ఓ దాంట్లో ఉల్లిగడ్డ పెట్టండి, కావాలంటే కూరగాయలు తిరిగేసుకోండి, 10 నిమిషాలు గ్యాస్ మీద పెట్టండి, ఉడికిపోతే తినండి.
సాదా భోజనం గ్యాస్ గ్యాస్ నీ వినాశ పడతాయి, గ్యాస్
ఫీల్ అవుతా కొంచెం ఇస్కే
నీ గ్యాస్ హాత్ ఉఠా కిస్కే ఘర్ మే గ్యాస్ నీ బోల్నా తో వో కాటేగా. అచ్చా నీ నీ హాత్ हाथ उठाओ किसके किसके घर में गैस नहीं है, सबके घर में गैस है, आप फालतू बात क्यों करते
हैं?
तब की तब देखी जाए, तब बाबा का घर होगा माउंट आबू, माउंट आबू वहां गैस नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा.
کئی بار بابا نے کہا کہ لاسٹ سو فاسٹ فرسٹ میں جا کے بولتے ہیں. پھر بابا ایک یہ بات بھی پتا ہے کہ جو آخر میں آنے والے پائی پیسے باتیں ہیں, آخر میں آنے والے پائی پیسے کی پراپتی پر پاتے بول کے
آخر میں آنے والے
آخر آنے والے
لاسٹ میں آنے والے
بھی بتایا, یہ بھی بتایا بابا نے.
لاسٹ مانے تریتا کے انت میں, اور یہاں لاسٹ ہے سنگم یوگ کا جب انتم پارٹ ہوگا, سنگم یوگ جب سماپت ہوگا, سو سال کا سنگم ہے جب سماپت ہوگا اس سمے کی بات. ایسے نہیں, جو آٹھ کا پارٹ کھلے گا اس کے ساتھ ہی وہ بھی پرتکش ہو جائیں گے جو تریتا کی انتم سیڑھیوں میں آتے. نہیں تیلگو بھاشا بول دو, گائے کی پوجا کرتے ہیں, مکھ کی پوجا نہیں کرتے, گائے کی پوجا تو مکھ کی بھی کرتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, لیکن گائے کی پوچھ پکڑ کر کے وشے ساگر کو کراس کرتے ہوئے دکھاتے ہیں بھکتی مارگ میں, خاص کر کے کلکتے میں. پوچھ ہے دے ابھیمانی کی پوچھ, کیا گائے کی جو پوچھ ہے وہ اور جانوروں کی دے ابھیمانی کی پوچھ کے مقابلے بہت شریشت ہے. اس لیے گائے کو گرو مان کر کے اس کا پیچھا پکڑتے ہیں اور کراس ہو جاتے ہیں. یہ بولا ہے ماتا گرو بنائے بغیر ادھار کوئی کا ہو نہ سکے, ایک کے پتت بننے سے سب پتت بن جاتے ہیں اور ایک کے پاون بننے سے سب پاون بن جاتے ہیں. وہ ایک کون ہے؟ برہما نے دوسرے ہی چھوڑ دیا. پریکٹیکل میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے؟ جگدمبا. جگدمبا کا جو دیہ ابھیمان روپی پوچھ ہے وہ پوچھ کو فالو کرنا پڑے. اگر وشے بہترین ندی کراس کرنی ہے کوئی پرش کو گرو بنانے کی بھول نہیں کرنا, سنگم یوگ میں اس کو گرو بنانا پڑے. جو ماتاؤں میں سب سے بڑی ماتا ہے, جس ماتا کی سب نے درگتی کی. اس ماتا کی سدگتی ہوگی تو سب کی سدگتی ہو جائے گی. ایک کے پتت بننے سے سب پتت ہو جاتے ہیں اور ایک کے پاون بننے سے سب پاون ہو جاتے ہیں. دلی قبرستان بنتی ہے, دلی پرستان بنتی
ہے. ترمورتی کو بھی دکھاتے ہیں کیوں کہ اس کو جنم دیتے ہیں, ترمورتی کو بھی دکھاتے ہیں, کچھ وہ لکشمی کو دکھاتے ہیں.
پوتر کی جاتی ہے, پوتر کی پوجا نہیں کی جاتی ہے. پوچھ شبد سے ہی ثابت ہوتا ہے دیہ ابھیمان ہے. اور دیہ ابھیمان ہے تب ہی کنٹرول ہوتا ہے, نہیں تو جس میں دیہ ابھیمان نہیں اس میں کنٹرول کرنے کی بھی درکار نہیں. ستیگ میں لکشمی نارائن کو کھڑا ہوا دکھایا ہے یا چھتر چھایا کے نیچے دکھایا ہے؟ مانا کنٹرول کر رہے ہیں یا آٹومیٹک کنٹرول ہوتا ہے؟ نہیں, अनुशासन वहाँ टूटता ही नहीं। कहाँ सत्य में कोई अनुशासन ही नहीं होता, इसलिए शासन किसके ऊपर करेंगे। त्रेता में जब दो कलाएं कम हो जाती है तब शासन करने की दरकार पड़ती है। तो जगदम्बा सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? सूर्यवंश में शासन करने की दरकार है या चंद्रवंश में दरकार शुरू होती है? चंद्रवंश में दो कलाएं कम हो जाती है। ये कहा जाता है राज करेगा खालसा, और सिखों में ही कहते हैं जरूर सिख धर्म की कोई आत्मा है जो अंत में सारे ही ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल करेगी। क्यों? भगवान आकर के ऐसा परिवर्तन कराते हैं। माता को सब ने कंट्रोल किया है, बच्ची के रूप में पैदा होती है तो बाप कंट्रोल करता है, शादी होने के बाद पति कंट्रोल करता है, पति उतार खासता चला जाए तो बच्चे कंट्रोल करते हैं। माता कभी स्वतंत्र नहीं रह पाई कलयुग में। ऐसी परतन करवाने वाली माताओं की भी माता है जगदम्बा। तो जगदम्बा आकर के अंत में राज करती है। ये गायन चला आ रहा है, माता गुरु, ऐसी माता गुरु बगैर किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। सुप्रीम स्वयं 108 में प्रवेश करता है, फिर तो सर्वव्यापी होना चाहिए। अरे वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है या 108 व्यापी है? क्या है अभी सही कर दिया शुरू?
108 में भी प्रवेश करती है ये वाली में बताया।
सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला प्रवेश करता है। तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं, मैं सब में प्रवेश नहीं करता हूँ। जो धर्म पिताए हैं वो भी ऊंचे ऊंचे देवता में प्रवेश करते हैं या नीचे देवताओं में प्रवेश करते हैं। सुप्रीम सोल सिर्फ एक में प्रवेश करता है,
12
लिंगों में वो एक प्रवेश करता है जिसको कहते हैं महारुद्र। 11 है सामान्य रुद्र। और
मकर
रथ में प्रवेश करता हूँ। कोई ये कह नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। हाँ, बच्चों को उठाने के लिए कोई मैं प्रवेश करके दृष्टि देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाचा की ताकत देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाइब्रेशन की ताकत देता हूँ, बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। अगर कहे तो बाप कहते हैं वो कौन है? दसवा सुन रही हिरण्यकश्यप। मुकर्रर रथ धारी भी नहीं अपने मुख से कहे कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। अगर कहे तो दोष लगता है, हिरण्यकश्यप बनने का दोष लग जाता है। भगवान होगा तो भगवान को कहने की क्या दरकार कि मैं भगवान हूं? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो एक मुकर्र रथ में प्रवेश करता है बाप के रूप। अगर रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश करे तो 11 रुद्र मुख्य माने जाते हैं, 108 की रुद्रमाला भी मानी जाती है, और फिर बोला है 500-700 करोड़ भी रुद्रमाला के दाने। बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितने की है? 500-700 करोड़। तो सभी प्रवेश करेगा क्या? और
यह अभी समय नहीं है, राज मंत्र में तो बुलाने पर ब्रह्मा आते हैं, और यह बच्चों के आगे क्लास करने के लिए वाइब्रेशन तो कम से कम चाहिए ना, बाप को आने चाहिए याद का वाइब्रेशन।
अगर याद का वाइब्रेशन चाहिए तो फिर मुकर्रर हो जाने चाहिए, अभी याद में बैठ करके हम बुला ले, बुलाते हैं या बुला पाते हैं? ये कोई ने बुलाया? मैं बुलाने से नहीं आता हूँ, जब आना होता है तो ही आ जाता हूँ। इन्हें ब्रह्मा से पूछो कि मैं कब आता हूँ, इनको पता पड़ता है? इनको भी पता नहीं पड़ता है मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ, मेरे आने जाने की तिथि तारीख निश्चित हो ही नहीं सकती। ये भी एक बाप के पार्ट की पहचान है।
बाबा विष्णु को पूरा अलंकार क्यों दिखाते हैं? अलंकार माना देहाभिमान होते हैं ना?
अलंकार देहाभिमान होते
हैं, ब्रह्मा को नहीं तो दिखाते हैं, तो विष्णु संकल्प को नहीं दिखाते हैं, देह अभिमान के रूप में संकल्प को दिखाते हैं, पर विष्णु को क्यों पूरा अलंकार दिखाते
हैं? अलंकार जो है वो गुण रत्नों की निशानी है, दिव्य गुण है वो ब्राह्मणों में टिकते हैं क्या? आज दिव्य गुणधारी दिखाई देते हैं और कल गुणहीन बन जाते हैं, आज निश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं, कल टोटल अनिश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं। तो ब्राह्मणों की अलंकार नहीं हो सकते। शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं, इसे क्या साबित होता है? शंकर भी संपन्न स्टेज बनने से पहले, शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ने से पहले अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी। याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, इससे ही क्या साबित होता है संपूर्ण है या अपूर्ण है? याद में बैठा है माने संपूर्ण है नहीं, जो याद करने की क्या दरकार? और ब्रह्मा तो है ही दाढ़ी मूंछ वाला, ब्रह्मा को तो पावन देवता कहेंगे ही नहीं।
तो संपन्न है तो काला रूप में क्यों दिखाया?
तो यहाँ की यादगार दिखाई गई है कि जो विष्णु बनने वाली आत्माएं हैं, विष्णु में पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, वो कालेपन में जब पाठ बजाती हैं तो उनका यादगार दिखा दिया विष्णु का काला रूप, का काला रूप, शिव का काला रूप, राम का काला रूप, सबको जगन्नाथ का काला रूप, श्रीनाथ का काला रूप, नाम रख दिया श्रीनाथ और चेहरा दिखाई दिया कलमोह।
बाबा ने कहा कि रजोस में विनाश किया तो अनुभव होता है, बाबा ने
कहा रजो प्रधान स्टेज को जब हम क्रॉस करेंगे माने द्वापर युग की सीढ़ी की अंतिम स्टेज जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो डिस्चार्ज होना ही बंद हो जाएगा।
तो वैसा
मनसा के जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, कर्मेंद्रियां जो व्यर्थ कर्म करती हैं और कर्मेंद्रियों से जो क्षरण होता है शक्ति का वो भी बंद हो जाएगा।
तो अभी तक ना नहीं हुआ
है,
अभी तक ना नहीं हुआ वो स्टेज,
अभी तक देवान है ना, देवान है तो अनुभव भी होता होगा,
देवान तो अनुभव हो रही है तो स्टेज पास क्या बोल के अनुभव नहीं हो रही
है,
देवान है बोल के अनुभव हो रहे हैं और जो स्टेज पास किया बोल के,
लेकिन बाबा ने बोला है तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना, कि बाबा ने बोला है तो ऐसी भी स्टेज हमारी नंबर बार आवेगी, आवेगी ना नहीं आवेगी,
कभी कभी
नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
कभी कभी ये संकल्प आ रहा है कि आखिर में कब तक
होना ये चाहिए, कभी नहीं अभी, अभी तक के पुरुषार्थी जीवन में भी तो बहुतों ने अनुभव किया होगा कि लंबे समय तक इंद्रिय जीत जैसी अनुभव स्टेज होती है, भले थोड़े समय के लिए हुई हो लेकिन अनुभव सबको हुआ है, थोड़ा या बहुत, अगर थोड़ा अनुभव हुआ है तो क्या लंबा नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा अनुभव हुआ है तो उसे लंबा भी बनाया जा सकता है, माया या माया भी पुरुष या माया भी स्त्री या माया भी पदार्थ हमारा पीछा तब तक ही करेंगे जब तक उनके साथ हमारा हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, उत्तरेसर जन्मों का हिसाब किताब हमने ही जोड़ा है, वो हिसाब किताब पूरा होगा और उनके प्रभाव में आना हमारा बंद हो जाएगा, जरूर गंगा कोई चैतन्य होगी या कोई जड़ पानी की गंगा होगी, प्रभाव किसका पड़ता है, प्रभाव चैतन्य का ज्यादा पड़ता है या जड़ वस्तु का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जड़ का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन जड़त्व में ही शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी चैतन्य आत्मा है, और गंगा को चित्रों में चित्रित किया गया है, शंकर के जटाओं में गंगा बैठी हुई है, मुख दिखाया गया है, इसका मतलब मुंडमाला का मणका है, रुद्रमाला का मणका है, कोई चैतन्य आत्मा है, भले तन से पवित्र न रही हो लेकिन मन बुद्धि से मुंड ज्ञान की धारा बहाता रहा है, मनन चिंतन मंथन में रहा है, इसलिए गंगा को मुख ही मुख दिखाया जाता है, जैसे अष्टदेवों को आठ मणकों के रूप में शंकर के मस्तक के ऊपर रखा हुआ दिखाते हैं, ऐसे ही गंगा को भी दिखाते हैं, तो गंगा की महिमा बहुत ज्यादा है, जरूर बहुत सेवा की होगी, ऐसे सबसे उन बच्चों को बाप बैठ याद करते, और ये ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, ना आदि में इतनी प्रत्यक्ष होती है न मध्य में इतनी प्रत्यक्ष होती है, अंत में जब निकलती है तो प्रत्यक्षता हो जाती है, जैसे सन्यासियों के लिए बोला है, अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो गंगा के किनारे कौन बैठते हैं, सन्यासी लोग बैठते हैं, वो तो सन्यासी है, वो है सन्यासियों की भी अम्मा, सन्यास व्यक्ति की विशेष प्योरिटी उसके अंदर रही होगी, यमुना का पार्ट डिक्लेयर हो गया, बेसिक में भी एडवांस में भी सरस्वती जगदम्बा का पार्ट डिक्लेयर हो गया, अभी कहें अंत हुआ, क्यों नहीं अंत हुआ, तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। देखो सन्यासियों का ग्रुप निकलता है, उत्तर भारत के जो विद्वान पंडित आचार्य बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं, वो भी जागने लग पड़ते हैं। दक्षिण भारत में चारों ओर लहर फैली है, जो भी फैली है, उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं। क्लैरिफिकेशन में पीछे बोला होगा कि द्वापर युग कलयुग में ऐसे क्रूर राजाएं भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रानियों को अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया तो उनको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते थे, सर ऊपर खुला रहता था और दही डाल करके कुत्ते छोड़ देते थे और कुत्ते उनको नोच नोच करके खा जाते थे। उसकी शूटिंग कैसे होती है? अभी तक तो ऐसी शूटिंग हुई नहीं, हुई है क्या? नहीं हुई, लेकिन आगे ऐसा टाइम आने वाला है। विचार जो है वो देह अभिमान के कारण पनपता है कि बिना देह अभिमान के भी विचार पनपता है? जो रानियां इतने देहभान में आती हैं, कि अपना देहभान उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो राजा को छोड़ करके और पुरुषों में आसक्त हो जाती है, तो उनको ये सजा मिलती है। अगर ये साबित हो जाए,
सजा किस
गड्ढे में? अवनति के गड्ढे में गिरती है और गिरने के बाद मिट्टी से चारों ओर देह अभिमान की मिट्टी से इतनी परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है कि जो विचारी कुत्ते हैं वो नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरे शब्दों में मुरली में भी बोला है जो गायें दूध नहीं देती, माने दूसरी आत्माओं को जो बाप कहते हैं सुख दो और सुख लो, जो गैया दूध नहीं देती है वो जानवर गऊओं की बात है संगम युग में या चैतन्य गऊओं की बात है? ह्यूमन गऊओं की बात है, ह्यूमन गऊओं की बात है। जो सुख रूपी दूध नहीं देती है, दुख ही दुख देती रहती है, ऐसी देह अभिमानी गायों को अंत में क्या असर होगा? कि कसाईयों को डाल दी जाएगी और कसाई उनको काट काट करके उनका देह अभिमान खाती रही है।
कसाई मान का कौन? कसाई माना कसाई मान का कौन है?
कसाई माने गाय काटने वाले मुसलमान होते हैं। और कहां की बात? ऐसा टाइम आने वाला है
यह सब सीताएं हैं ना?
तुम
सब सीताएं हो, है ना? तो ये बात पुरुषों को भी लागू होते
है?
अभी जो पुरुष में है उसका भी लागू होता है क्या?
इसमें
महावत
अभी पुरुषों को भी ये बात लागू होती है, तुम सब सीताएं हो। सात श्रीमती लीका से नीचे ऊपर होने वाली हूँ, कोई कम कोई ज्यादा।
बाबा आज की क्लास में व्यास और रामायण का लिंक बताया ना बाबा ने, बाबा बताया इसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं मिला
है,
तो क्लैरिफिकेशन तो क्लास में नहीं आया।
माना जो शास्त्र लिखने वाला है विशेष शास्त्र लिखने वाला जो विशेष शास्त्रकार है वो कौन है? व्यास ही है। जो द्वापर के आदि में महाभारत वेद आदि लिखने वाला था वो ही फिर द्वापर में मध्य में आकर के वाल्मीकि रामायण भी लिखता है, राम वाली आत्मा, और वो ही कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में हिंदी में रामायण लिखता है। इससे साबित होता है कि व्यास वाली ही आत्मा ही राम बनती है, का व्यास का जन्म भी साबित होता है, वाल्मीकि का जन्म भी साबित होता है, और तुलसीदास का भी जन्म साबित होता है।
स्वर्गीय संगठन का जो लीडर बनते हैं ना, स्वर्गीय संगठन का लक्ष्मी नारायण जो बनने वाले हैं वही त्रेता में राम सीता बनेंगे।
अकेले की बात नहीं है, सत्युग में जो भी जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के त्रेता में राम सीता बनेंगे। मान लो संगम युग का पहला लक्ष्मी नारायण है
जी,
नरसे नारायण
बाबा ने कहा
त्रेता की पहली गद्दी में वो राम सीता बनेगा,
वही आत्मा बनेगी,
वही आत्मा
ऐसे 21 जन्म वही आत्मा आवेगी।
21 जन्म की बात नहीं है, त्रेता में तो जन्म ही 12 होते हैं,
12 और
सत्युग में 9 जन्म होते हैं। जो 9 जन्म के लक्ष्मी नारायण है 9 डायनेस्टी में, वो त्रेता की 9 डायनेस्टीज में राम सीता बनते हैं।
डायनेस्टीज में बनते बाबा, वो तो पहले जो युगल है, जो युगल टिकल हुआ है वही युगल युगल के रूप में 21 जन्म जाएगा क्या?
हाँ जी, हाँ जी, लौकिक दुनिया में बाप एक जन्म की सगाई कराते हैं, और ये बेहद का बाप
21
जन्म की सगाई कराते हैं। 21 जन्म तुम प्यार के बंधन में ऐसे बंध करके रहेंगे जो कोई बीच में रावण टांग अड़ाए नहीं सके, इतना आकूट प्यार मिलता है। बाबा ने मुरली में बोला है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो जो अव्यक्तवाणियों को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अव्यक्तवाणियां उनको अच्छी लगती हैं, उनको लिए क्या कहेंगे? उनको मुरलीधर से प्यार है या नहीं है? इसका जवाब है मुरली किसे कहा जाता है पहले ये पक्का करें। मुरली माना क्या है? जो बाप के डायरेक्ट मुख से बोली जाए वो मुरली, बाकी तो बांस की मुरली है, सुनने में अच्छी लगेगी, सुनाने में अच्छी लगेगी, लेकिन अर्थ उसका कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ सुन करके कहेंगे बड़ी अच्छी मुरलिया की तान बनी, लेकिन समझ में तो कुछ भी आई नहीं, तो वो मुरली की बात नहीं है। जो सिर्फ सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन समझ भी नहीं पाते और दूसरों को समझाए भी नहीं पाते और फिर जीवन में धारणा करना तो दूर की बात रह गई। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो कौन सी मुरली की बात है? वही मुरली की बात है जो बाप बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। क्या ब्रह्मा बाबा के तन से बाप टीचर सब गुरु कहें? नहीं कहेंगे। और अव्यक्त वाणी की बात रही, अव्यक्त वाणी भले ब्रह्मा के मुख से बोली जाती है, दादी गुलजार के मुख से ब्रह्मा की सुन बोलती है, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद वो मुरली है या बिना क्लैरिफिकेशन के भी मुरली है?
क्लैरिफिकेशन के बाद ही वो मुरली है। क्लैरिफिकेशन के बाद ही वो मुरली,
क्लैरिफिकेशन जब मिलता है तब कहेंगे मुरली, नहीं तो जैसे भूत प्रेत होते हैं किसी में प्रवेश करते हैं अजब अजब तरीके से बोलते हैं, कोई करके बोलेगा, कोई जोर से बोलेगा, कोई बहुत से आवाज से बोलता है, कोई कैसे बोलता है, माने उनकी आवाज ही निराली होती है। भगवान बाप तो व्यक्त भाषा में आकर के बोलता है, पति तन में आकर के बोलता है, गुलजार दादी के तन में पावन तन में आकर नहीं बोलता है, उसको मुरली नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनेंगे तो बहुत नाराज होगा।